के बीच में उपस्थित है आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी सविता दीदी। हम एक हाथ की ताली से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन, मनन, चिंतन, स्मरण कर रही हैं। आप मधुबन बेहद भूमि में पिछले 28 वर्षों से समर्पित होकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर होने के आधार से आपने ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में जब खुला था तो आपने प्रारंभ में सेवाएं दी चिकित्सा जगत की। आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की भी आप पर्सनल डॉक्टर रहे। आप विमेन विंग के मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। ऐसी होली हंस बुद्धि, दिव्य बुद्धि, मिलनसार, देश विदेश में अनेक आत्माओं की ज्योत जगाने वाली हमारी डॉक्टर सविता बहन से हम निवेदन करेंगे कि वो हमें प्योरिटी की पर्सनैलिटी पर अपना मार्गदर्शन दे, ताकि हमारी तपस्या पवित्रता के बल से और अधिक अखंडित हो जाए। डॉक्टर सविता
ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, आधार हम सब जानते हैं, पवित्रता है। और अभी गीत भी सुन रहे थे हम, सबसे बड़ी पूंजी भी पवित्रता है। पवित्रता के आधार पर ही हमारे इस जीवन की पर्सनालिटी है। ऐसे तो दुनिया में कई प्रकार की पर्सनालिटी होती है, शारीरिक पर्सनालिटी भी होती है, शारीरिक सुंदरता के आधार पर या शारीरिक बल के आधार पर, तो दुनिया में उनका नाम होता है। जैसे आजकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं तो उसमें जो सबसे सुंदर है अगर वो जीतते हैं तो फिर पूरे विश्व में वो नामी ग्रामी हो जाते हैं, तो एक पर्सनालिटी के रूप में वो जाने जाते हैं। और ऐसे अनेक नाम हम सब जानते हैं। पोजीशन की पर्सनालिटी होती है, ऊंचे पद पर जो कार्य करते हैं वो भी उसी आधार पर नामी ग्रामी होते हैं और पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं। और ऐसे ही धन, व्यवसाय या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी भी पर्सनालिटी होती है। जैसे बाबा नाम लेते हैं, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, लेकिन हम सब वो देह अभिमान वाली कोई भी पर्सनालिटी नहीं है। हमारी पर्सनालिटी कौन सी पर्सनालिटी है? रूहानी पर्सनैलिटी है। और वो रूहानी पर्सनैलिटी का आधार प्यूरिटी है। वो रूहानियत हमारे अंदर तभी आती है जब प्यूरिटी है। अगर प्यूरिटी नहीं है तो फिर रूहानियत भी चेहरे पर दिखाई नहीं देगी। रूहानियत अर्थात दिव्यता, वो डिविनिटी हमारे द्वारा हम भी महसूस करें और दूसरे भी हमसे महसूस करें। तो पवित्रता का जो आधार है ब्राह्मण जीवन में, वो बाबा ने बहुत सहज हमें करके दिया। मैं कौन हूं सिर्फ एक पाठ पढ़ाया, स्मृति दिलाई, जो हम विस्मृति में थे आज तक इतने जन्मों से, और उसके कारण ही अपने स्वधर्म से, स्वस्वरूप से भटक गए थे। लेकिन बाबा ने हमें स्मृति दिला दी कि मैं हूं ही पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ आत्मा, ये मेरा निजी स्वभाव है, ये मेरा स्वधर्म है पवित्रता, और वो स्मृति से हमें समर्थि आ गई। नहीं तो आज की दुनिया में पवित्रता को लोग असंभव समझते हैं, और सन्यास धर्म में भी इसीलिए वो सन्यास करते हैं क्योंकि वो समझते हैं घर गृहस्थ में रहकर के पवित्रता का पालन करना तो असंभव है, मुश्किल है नहीं असंभव ही है, और इसीलिए अपना घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। फिर भी वो कई तरीके अपनाते हैं, परमात्मा विधि तो नहीं है उनके पास। अब उनके पास विधि होती है या तो वो स्त्री को मां के रूप में देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कई संतों ने ऐसा किया, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को, उनकी तो जन्म भी नहीं हुआ था उसके पहले ही माँ बाप ने सगाई कर दी थी कि अगर बेटा हुआ और आपकी बेटी हुई तो उनका संबंध होगा, उस जमाने में ऐसा ही होता था। और लेकिन उनकी जो लगन थी वो भगवान की तरफ थी, अब बचपन से ही वो हो चुका था तो माँ बाप ने तो बहुत कम आयु में, जब वो बोलते भी नहीं थे बोलना भी नहीं सीखे थे तभी उनकी शादी कर दी। लेकिन वो तो संत हो गए सन्यासी हो गए, और फिर जब पत्नी की जिम्मेवारी की बात आई तब फिर उन्होंने उनको हमेशा उस रूप में ही देखा और उनकी पत्नी ने भी उसे स्वीकार किया। ऐसे ही महात्मा गांधी के लिए हम देखते हैं, भारत की आजादी के टाइम जब उन्हें लगा कि मुझे ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, वो ताकत मुझे तभी आएगी, वो शक्ति तभी होगी मेरे अंदर कि मैं इतना महान कार्य कर सकूं जब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो तो घर गृहस्थ में ही रहने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पत्नी को भी बा कहा, गुजराती थे तो गुजराती में बा का अर्थ होता है माँ, इसलिए कस्तूरबा नाम से ही वो प्रसिद्ध हुई। फिर तो जब माँ की दृष्टि उन्होंने उनके प्रति की तब जाकर के उन्होंने ऐसे महसूस किया कि हाँ अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूँ। तो बाबा ने वो विधि हमें नहीं बताई, बाबा ने तो, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे हैं तो हम सब आपस में कौन हो गए, भाई बहन। फिर बाबा कहता है भाई बहन भी नहीं, भाई बहन में भी कई बार हमारी दृष्टि वृत्ति चंचल हो सकती है। आज कलयुगी दुनिया है और कलयुगी दुनिया में ऐसे कई किस्से आज के समय में होते रहते हैं, तो इसलिए भाई बहन के दैहिक संबंध में भी नहीं आना है, लेकिन उससे भी ऊपर भाई भाई की दृष्टि की आत्मा मेल है, आत्मा फीमेल है ही नहीं। बाबा ने तो यही बताया कि आत्मा मेल है और आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, और इस रीति से हम सब बाबा के वर्षे के भी अधिकारी हैं। और जब वो दृष्टि है तो वो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र दृष्टि है, लेकिन उसका हमें अभ्यास करना पड़ता है क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमें आदत तो देह अभिमान की पड़ी हुई है। तो अगर हम आत्मिक दृष्टि में नहीं हैं तो फिर देह अभिमान में आते ही तुरंत अगर हम दैहिक आकर्षण में आ जाते हैं या देह के प्रभाव में आ जाते हैं तो फिर पवित्रता की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। पवित्रता को बहुत गहराई से बाबा ने हमें स्पष्ट किया कि केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पवित्रता नहीं है, वो तो पहला स्टेप है, पहला चरण है। पवित्रता यानी संपूर्ण पवित्रता, केवल कर्म की पवित्रता नहीं लेकिन वाणी और फिर उससे भी आगे मनसा तक, संकल्प तक भी हमारे मन में देह से संबंधित विचार न चले। फिर बाबा आगे कहते हैं ब्रह्मचारी बनना, केवल ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला, बाबा को पूरी तरह से फॉलो करने वाला। उससे आगे बाबा कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी बनना, केवल काम विकार को जीतना नहीं लेकिन सभी विकारों को भी जीतने की बात नहीं, उससे भी आगे उसके भी अंश वंश उसको भी जीतना। संपूर्ण पवित्रता की बात है। हम अभी पुरुषार्थी हैं तो जरूरी नहीं है कि हम संपूर्ण पवित्रता तक पहुंचे हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता की स्थिति क्या है वो हमें ज्ञान होगा तभी हम उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। तो वो बाबा ने हमें समझ दी है कि कोई भी विकार का अंश वंश भी ना हो और उससे भी आगे स्वप्न में भी किसी भी आत्मा के प्रति आवेश में आकर के या काम विकार के वश या फिर ईर्ष्या के वश कोई कर्म नहीं होना चाहिए। यानी स्वप्न में भी किसी विकार के वश कोई कर्म किसी आत्मा के प्रति ना हो, क्योंकि स्वप्न हमारी मनसा का दर्पण है जो सारे दिन में चलता है, फिर वो कहीं ना कहीं स्वप्न में नजर आता है ना? और उससे भी आगे बाबर कहता है कि पूरी दिनचर्या हमारी जो है अमृत वेले से रात तक जो बाबा की श्रीमत मिली हुई है वो दिनचर्या भी उसी प्रमाण हो। अगर दिनचर्या में भी ऊपर नीचे होता है तो भी उसको पवित्रता की संपूर्ण स्थिति नहीं कहेंगे। फिर उससे भी आगे बाबा कहता है कि व्यर्थ संकल्प की भी समाप्ति, विकारों का संकल्प विकल्प तो अलग बात है लेकिन व्यर्थ संकल्प भी ना चले और दुख की अनुभूति ना हो, तो ये हम कहेंगे पूरी तरह से 100%। अगर व्यर्थ संकल्प तक भी हमारे समाप्त हो चुके हैं तो वो स्थिति है, तो हम कहेंगे कि हमारी जो दादियां हैं मम्मा बाबा तो पहुंचे ही उस स्थिति तक, लेकिन अभी वर्तमान में दादियों के लिए हम कह सकते हैं कि वो उस स्थिति तक हैं। हम कहां तक हैं पवित्रता की स्थिति में वो हमें अपनी महीन चेकिंग करनी है और चेकिंग के बाद ही फिर हम चेंज करेंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। तो पवित्रता के लिए बाबा हमेशा हमें कहते हैं कंपनी और कंपेनियनशिप बाबा के साथ है मेरी। कैसे हम विकारों के सूक्ष्म रूप पर भी विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि कहां ना कहां इस संसार में हम रहते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो देह अभिमान में आ ही जाते हैं, तो किसी ना किसी आत्मा का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता ही है। किसी का प्रभाव ना पड़े ऐसा नहीं होता है। कोई अपने गुणों से प्रभावित करता है, कोई अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करता है, कोई अपनी कलाओं से, कोई अपनी विशेषताओं से। और अगर हम प्रभावित हुए वो मुझे अच्छा लगा, ऐसे ही कहेंगे ना। साधारण शब्दों में हम क्या बोलते हैं, अच्छे लगते हैं। फिर अच्छे लगते हैं तो फिर उनसे बात करना अच्छा लगता है, उनसे मिलना हमें अच्छा लगता है। पवित्रता माना सबके साथ समान स्नेह, सबके प्रति समान वृत्ति, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हर आत्मा के संस्कार स्वभाव अलग अलग हैं। तो जो अच्छे हैं वो तो अच्छे ही लगेंगे ना, क्या कहेंगे हम। जो बुरे हैं, ब्राह्मण तो इतने बुरे नहीं होते, थोड़ा बहुत 19-20 कमी होती है वो अलग बात है, लेकिन अगर हमारी दृष्टि ऐसी है अवगुण वाली है कि किसी के गुण नहीं उसकी एक कमी है तो भी मुझे वो ज्यादा नजर आती है, तो हम कहेंगे कि ये बुरे हैं तो बुरे ही लगेंगे ना, और ये अच्छे हैं तो कोई मेरा स्नेही है, कोई मेरा सहयोगी है, कोई मुझे विशेष समय पर सहायता कर देता है तो वो मुझे ज्यादा अच्छा ही लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा। तो बाबा कहता है अगर हम एक्स्ट्रा में आ जाते हैं, मतलब मैंने उसकी कंपनी पसंद की, तो फिर वो भी काम विकार का अंश है। अंश है माना वो आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब बनना शुरू हो गया, कर्म बंधन में मैंने आना शुरू कर दिया। और अगर मैं कर्म बंधन में आती हूँ तो फिर बाबा के साथ जो मेरी योग की लाइन है वो क्लियर नहीं रहेगी। हम योग में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वो आत्मा मुझे जरूर याद आएगी और मुझे योग की स्थिति से वो नीचे ले आएगी। दूसरे शब्दों में हम इसे लगाव चुकाव कहते हैं, है ना। पहले लगाव होता है और फिर झुकाव होता है उस आत्मा की तरफ। तो ये भी महीन चेकिंग है हमारी, किसी न किसी आत्मा के प्रति समय प्रति समय। हमेशा ही एक आत्मा के प्रति लगाव चुकाव होता है ऐसा नहीं है ना, समय परिस्थिति के अनुसार वो लगाव चुकाव बदलता रहता है, कभी किसी के प्रति कभी किसी के प्रति। पर अगर मेरी बुद्धि जाती है, अगर मेरी वृत्ति जाती है, तो इसका मतलब सर्व संबंध का अनुभव अभी तक भी बाबा से मेरा पूरी तरह से नहीं है। बाबा कहते हैं हमेशा बाबा को बीच में लाओ। बनाने वाला कौन? हम परिवार में हैं, परिवार की कंपनी है जरूर, सभी के साथ हमारा स्नेह सहयोग है, परिवार है तो स्नेह सहयोग है ही है, लेकिन परिवार किसके कारण है? ये अलौकिक परिवार, दैवी परिवार, ईश्वरी परिवार, ये भी किसके कारण है? बाबा के कारण है। और अगर उस आत्मा में कोई विशेषता है भी तो किसकी देन है? वो बाबा की देन है। तो कहीं भी मेरी बुद्धि अगर प्रभाव में जाती है तुरंत क्या स्मृति दिलानी अपने आप को? बाबा को बीच में लाएंगे तो जहां बाप है वहां पाप नहीं है, और जहां पाप है वहां बाबा खिसक जाता है। बाबा कहते हैं इन्होंने आत्मा को सहारा बना लिया, अभी अब आत्मा को सहारा बना लिया तो फिर मेरी जरूरत तो नहीं है, तो बाबा तो फिर दूर हो जाता है। फिर हम योग भी लगाते हैं तो फिर योग भी नहीं लगता है बाबा से हमारा, कोशिश करते हैं। फिर वो जो शक्ति, जो अतीन्द्रिय सुख हमें अनुभव होना चाहिए, बाबा से जो कनेक्शन महसूस होना चाहिए, वो कनेक्शन भी हमें महसूस नहीं होता है। तो ये बाबा कर्मों की सूक्ष्म गति हमें बताते हैं, क्योंकि इस समय तो हमें सर्व कर्म बंधन से मुक्त होना है, हमें कर्मातीत बनना है। अभी हमें बंधन बनाने नहीं है। अब हम तो परिवार में रहते हैं ना, फैमिली में रहते हैं, तो फैमिली में रहते हैं तो फिर कर सकते हैं ऐसा, प्रवृत्ति में रहते हैं तो प्रवृत्ति में तो कहीं ना कहीं, दूसरे शब्दों में हम उसे मोह भी कहते हैं, नष्टो मोहा बनना भी इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं रग तो होती ही है हमारी, रग का मतलब ही वही है। तो यहाँ भी बाबा हमें यही कहते हैं कि ट्रस्टी बनकर, मेरा ये मेरे हैं नहीं, लेकिन बाबा ने मुझे इनकी सेवा के निमित्त रखा है। ये भाव करना सब कुछ है, रहना भी है साथ में, कर्तव्य भी करना है, लेकिन निरंतर अपने भाव की शुद्धि। और वो भाव की शुद्धि होगी, जिम्मेवारी बाबा की है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, इन आत्माओं की सेवा के मैं निमित्त हूँ। तो फिर हम न्यारा और प्यारा रह पाएंगे में रहते हुए भी। और अगर दैहिक दृष्टि होती है मानो, तो फिर कई बार उस आत्मा के जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम तमो प्रधान दुनिया में रहते हैं और जितनी भी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं उनकी तो वही दृष्टि वृत्ति है, लेकिन क्योंकि अब हम पारस बुद्धि हैं, हम पवित्र बुद्धि हैं, अगर मेरी दृष्टि वृत्ति की पवित्रता है तो वो उस आत्मा को प्रभावित करे, मेरी पवित्रता के वाइब्रेशन उसे महसूस हो, उसे लगे कि जब हम इनके संपर्क में आते हैं तो हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। कई लोग ऐसा फील करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं फील करते हैं। आज भी जिन आत्माओं में जो बाबा के बच्चे उतना पवित्रता का अभ्यास करते हैं और रूहानियत की स्थिति में रहते हैं, जब अन्य आत्माएं उनके संपर्क में आती हैं तो वो फील करती हैं कि ये आत्माएं हमसे न्यारी हैं और इनके इनसे मिलते ही हमें शांति मिलती है। पवित्रता सुख शांति की जननी है, पवित्र हैं तो सुख शांति के वाइब्रेशन हम फैलाते ही हैं। वो फीलिंग्स उनको आती हैं कि हाँ इनसे मिलते हैं तो सुख मिलता है, इससे मिलते हैं तो वो मन अपने आप ही पावन होने लगता है। लेकिन अगर उस आत्मा का प्रभाव मेरे ऊपर आ गया तो फिर हम क्या कहेंगे, हम अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। कई बार लोग ये एक्सक्यूज देते हैं, एक्सक्यूज माने बहाना देते हैं कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं ना तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। आज का जमाना वैसे भी मीडिया का जमाना है और मीडिया तो 24 घंटे वही दिखाता है। मीडिया माना चाहे वो टेलीविजन कह लो, चाहे वो इंटरनेट कह लो, चाहे वो व्हाट्सएप कहो, चाहे वो फेसबुक कहो, ट्विटर कहो, है ना। अगर आप जिनके भी हाथ में स्मार्टफोन है, इसका मतलब पूरी दुनिया उनके हाथ में है, ऐसे ही कहेंगे। तो चाहे वो मीडिया है, चाहे हम दुनिया के नजारे देखते हैं कहीं, तो कहीं ना कहीं तो ये सारी बातें हम देखते सुनते पढ़ते हैं तो उसका प्रभाव तो हमारे ऊपर आ ही जाता है। तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है ना, क्योंकि समय का प्रभाव है, युग का प्रभाव है, तो चलाना है। अगर हमारी पावरफुल स्थिति है तो देखते हुए सुनते हुए पढ़ते हुए, पहली बात तो हम करेंगे नहीं, हमारी इंटरेस्ट का वो है ही नहीं। जैसे कहते ना, मेरे टेस्ट का फूड नहीं है तो हम नहीं खाते हैं, नहीं मुझे पसंद नहीं है, मेरे को नहीं खाना है। या अगर किसी चीज की हमारी परहेज है तो भी हम वो परहेज मुझे करनी है तो भले ही मेरी पसंद का होगा तो भी हम परहेज करते हैं। डायबिटीज वाले मरीज को कहते हैं कि आपको मीठा नहीं खाना है, जलेबी सामने होगी तो भी पता है कि मुझे जलेबी नहीं खानी है, मुझे बहुत पसंद है जलेबी लेकिन फिर भी मुझे खानी है नहीं खानी है। वो अलग बात है कि कोई कोई जो है बद परहेजी करते हैं, है ना, वो नहीं। तो ये भी बाबा ने जो हमें अब टेस्ट दिया है, अब पवित्रता का टेस्ट हम अनुभव कर चुके हैं, प्यूरिटी की स्टेज कितनी श्रेष्ठ है, कितनी ऊंची है और कितना सुख देने वाली है, कितना आनंद देने वाली है, अनुभव किया है ना सभी ने, किया है कि नहीं किया। तो फिर वो चीज अब हमारे लिए डिस्टेस्ट हो गई। दुनिया को तो उस पवित्रता के आनंद का पता ही नहीं है, उस पवित्रता के सुख का पता ही नहीं है, तो उनके लिए तो वही सुख है एक तरह से। तो अभी हमें अपनी बीती हुई स्मृतियों को, इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी बीती हुई को चित्वो नहीं, जो हमारे पास्ट जीवन वो मरजीवा हो गए, अभी हम वो पूर्व जन्म के हमारे संस्कार थे, जो भी हमारी इस तरह की वृत्तियां रही या कर्म रहे पूर्व में, वो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार थे। ये जो हमारा जन्म है वो मरजीवा जन्म है, अब नया जन्म है, ये दिव्य जन्म है, ये पवित्र जन्म है। और फिर बाबा ने हमें ये भी स्मृति दिलाई कि हम आने वाले दो युगों तक इसी पवित्रता के आधार पर आत्मा और शरीर दोनों पवित्र मिलेंगे। जो सन्यासी होते हैं उनके तो फिर भी चलो वो आत्मा को पवित्र करने का प्रयास करते हैं लेकिन शरीर तो अपवित्र है, और अगर पुनर्जन्म लेंगे फिर भी अपवित्रता से ही शरीर होने वाला है। लेकिन हम आत्माएं इतने जन्मों तक संपूर्ण पवित्रता की स्थिति का अनुभव करेंगे और इसीलिए वो भी हमें स्मृति में लाना है, अपने भविष्य स्वरूप को भी सामने रखना है। बाबा ने शुरू शुरू में साक्षात्कार कराए, क्यों, भविष्य जो आने वाला समय है उसका अनुभव कराया, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था। पवित्रता के लिए इतने झगड़े हुए, लोग अपने परिवार के परिवार छोड़कर आ गए, सबने कहा कि बाबा बहुत अच्छा सत्संग है आपका लेकिन सिर्फ एक ही बात हटा दो, सारा विघ्न किसके कारण है। तो बाबा ने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहने वाला वो परमात्मा है, वो कहकर चला जाता है और उसे तो हीरों का व्यापार करना है। तो मैं भी हीरों का व्यापारी था, तो मुझे पता है। नहीं तो और सत्संगों में लोग जाते हैं, ठीक है सत्संग करके आ गए। आज के सन्यासी कभी भी घर गृहस्थी वालों को, जो भी उनके फॉलोवर होते हैं, उनको कभी भी पवित्रता का पालन करने के लिए नहीं कहते, क्योंकि उनको पता है हम घर गृहस्थ में रह के नहीं कर सकते, तो ये घर गृहस्थ में रहकर के कैसे पवित्रता का पालन कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, कई बार बाबा सुनाते मुरली में कि कहते हैं आग कपूर साथ में नहीं रह सकते हैं, और हम तो अभी चैलेंज करते हैं। हम जो भी बाबा के बच्चे हैं सब घर गृहस्थ में रहते हैं और पवित्रता के नियम का बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं। हिम्मत हमने रखी, एक तो स्मृति से समर्थी आई और दूसरा हिम्मत रखी तो बाबा की मदद मिली। हिम्मत बच्चे मदद बाप, तो हमारे लिए वो जो दुनिया असंभव समझती है वो सहज संभव हो गया। और प्यूरिटी के आधार बाबा कहता है सच्चाई और सफाई, इसीलिए सच्चे दिल पर साहब राजी बाबा कहता है। प्यूरिटी के साथ जो गुणा जो जुड़ा हुआ गुण है वो है सच्चाई और सफाई, अंदर भी और बाहर भी। ऐसे नहीं कि बाहर में तो हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन अंदर में हमारी भावना कुछ और है। जैसे कलयुग में लोग होते हैं अंदर कुछ होते हैं और बाहर कुछ और होते हैं। सामने आपके तारीफ कर रहे हैं, पीठ घूमते ही असलियत जो उनके मन में भाव है वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे हेरा फेरी वाला या धोखा देने वाला जिसे हम कहें, वो स्वभाव बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। या कई बार हम झूठ का सहारा लेते हैं छोटी छोटी बातों में, और इसीलिए इसको कहते हैं आज झूठ की दुनिया है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। हाँ तो दुनिया तो झूठ के बल पर चल रही है वो पता है, लेकिन हमारा ब्राह्मण जीवन का आधार झूठ नहीं होना चाहिए। और इसीलिए बाबा कहते हैं रोज रात को अपना चार्ट मुझे दो, जो भी है वो सच्चाई सफाई से बाबा के सामने रख दो। कोई भी श्रीमत का उल्लंघन हुआ, हमसे श्रीमत के विरुद्ध कोई भी कार्य हुआ, सच बोला तो आधा माफ, आधा तो फिर भी भोगना ही पड़ता है आप आत्मा को, क्योंकि कर्म तो हो गया ना, तो जो कर्म हो गया। लेकिन फिर भी अगर हमने बाबा को सच सुनाया तो फिर बाबा हमें अगले दिन के लिए या फिर भविष्य के लिए बाबा हमें शक्ति देते हैं उसे पार करने की, उस संस्कार को परिवर्तन करने की वो शक्ति हमें बाबा से मिलती है। लेकिन झूठ कब बोलते हैं? बने तक तो मैं समझती हूँ ब्राह्मण बनने के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन झूठ कब बोलते हैं? कब वो स्थिति आ जाती है झूठ बोलने की? जब कहीं ना कहीं अपना अहम सामने आता है, हमने गलती की लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने गलती मान ली, मेरी गलती लोगों के सामने आ गई और हमसे वो पूछा गया, और मुझे लगता है कि अगर मैंने सच कह दिया सच मान लिया तो फिर मुझे कमजोर समझ लिया जाएगा या मेरा नाम खराब हो सकता है मेरी गलती सबके सामने आने से। तो मैं अपना नाम नहीं खराब करना चाहती, सबके सामने अपने को कम नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि मेरा ऑलरेडी नाम है, मेरा सम्मान है, मेरा स्थान है, और अगर ये गलती सबके सामने आ गई, खासकर जब नाम रूप की बीमारी वाली बात होती है, कुछ इस तरह की गलतियां जब व्यक्ति से होती हैं और मानो वो बात फैल गई थोड़ी सी ना, बाबा तो हमें बहुत अंडरलाइन करते हैं नाम रूप के लिए, मुरली में बार बार आता है, सावधान रहने के लिए कहते हैं, जो हमने अभी बात की कि प्रभाव में हम आ जाते हैं, किसी ना किसी आत्मा के प्रभाव में आते हैं तभी उसके नाम रूप में हम फंसते हैं। तो ज्यादातर जब ऐसी गलतियां होती हैं तो व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें उसकी बदनामी कहीं ना कहीं छुपी होती है। और अगर हमने झूठ को सिद्ध करने के लिए, झूठ को सच सिद्ध करने के लिए फिर दो झूठ तीन झूठ कई बार कई झूठ का हमें सहारा लेना पड़ता है, और फिर हम खुद ही उलझते जाते हैं उसके अंदर। और मानो अगर हम उलझ गए और जो सामने हमारे निमित्त हैं, जिनके साथ ये बात हो रही है मानो, तो फिर हम उस वातावरण को पूरी तरह से कमजोर करने के निमित्त बन जाते हैं। अपनी स्थिति को भी हम कमजोर करते हैं और दूसरे के मन को भी दूषित करते हैं हम, और वातावरण को भी कमजोर करने के निमित्त बने। तो एक मुरली कुछ दिन पहले चली थी, बाबा ने कहा था कि ये महा महा पाप है। अगर कोई आपको इशारा दे रहा है और आपको लगता है वो बात नहीं है, अगर है और हमने स्वीकार किया, ये हमारी नम्रता है। बड़ी दादी कहती थी कि मानो कोई मेरे से भूल हो गई और मैंने हार मान ली अपनी, माना मैंने स्वीकार कर लिया उसको, तो हार्मनी हो जाएगी। हार मानी माना हार्मनी। हार्मनी शब्द है इंग्लिश का, इसका अर्थ है कि सद्भावना। सद्भावना माना फिर से सब कुछ वैसा का वैसा हो जाएगा, बिल्कुल बात खत्म हो जाती है, किसी का मन खराब नहीं होता। ठीक है, हर इंसान से गलती होती है और अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो वो वहीं की वहीं फिनिश हो जाती है, बात बिगड़ती नहीं है। लेकिन मैंने माना नहीं और ही उसको चलाया झूठ बोल बोल करके, जैसे हमने कहा, ये बहुत कम रेयर होता है लेकिन किसी किसी का ऐसा स्वभाव होता है। उस स्थिति में फिर हम महा 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 पाप के भागी बन जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में अगर मैंने विकर्म किया तो उसका दंड 100 गुना होता है, और अगर इस प्रकार के विकर्म से वो संबंधित है तो फिर बाबा इसको इस तरह से कहते हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि ऐसे देखो, मानो कभी आपकी वृत्ति में आता है तो मैं कचरे की टोकरी उठाकर जा रहा हूँ। एक मुरली में बाबा ने ऐसे कहा था जो मुझे ध्यान है, कि जैसे वो जमादार कचरे की टोकरी उठाकर जाता है, तो आप अपना वो रूप सामने लाओ, मतलब अपने आप को किसी भी तरह से सजा देकर के भी और किसी भी तरह से ऐसी स्मृतियां दिलाकर के भी अपनी धारणा में पक्के रहो। इसको कहा धरत परिये धर्म न छोड़िए, चाहे जो भी हो जाए पवित्रता के धर्म का तो मुझे पालन करना ही है। और अगर कहीं भी इस बात में इशारा मिलता भी है हमको, तो फिर हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है। और फिर कहते हैं सच तो बिथो नच, जो सच्चे होते हैं वो फिर निर्भय होते हैं। शिव बाबा भी सत्यम शिवम सुंदरम है, पहले ही उनके नाम के आगे सत्य आता है, और सत्य ज्ञान से ही सतयुग की स्थापना हो रही है। अगर सत्य ज्ञान नहीं होता तो ये सतयुग की स्थापना, मतलब सत्य का युग नहीं आ सकता है। तो परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमें सत्य समझ दी है, उस समझ को हमें अपना स्वरूप बनाना है, और वो तब होगा जब हम उसकी गहराई में जाएंगे, उसका चिंतन हम उतनी गहराई से करेंगे। कहते हैं ना, अगर कांटा लगा हुआ होता है तो उसको बाहर निकालने के लिए जो हम दूसरा कांटा या सुई प्रयोग करते हैं, वो उससे गहरा जाना चाहिए, तब वो कांटा निकल पाता है, नहीं तो वो कांटा नहीं निकलेगा। तो हमारी जो पवित्रता की अनुभूति है, जो हमारे विकार की अनुभूति है, उससे अधिक गहरी होनी चाहिए, तब जाकर के वो विकारी प्रभाव मेरे मन से जाएगा। कर्म से तो हम सहज धारणा कर लेते हैं, कर्म में धारणा करना, तो जिस दिन 7 दिन का कोर्स करते हैं और हमें तीर लगता है, उस दिन से ही हम पवित्रता के नियम, जो सच्चे ब्राह्मण है ना, जो बाबा कहता है हाफ कास्ट ब्राह्मण, एक होते हैं फुल ब्राह्मण और एक है हाफ कास्ट ब्राह्मण, तो यहाँ तो हाफ कास्ट नहीं बैठे हैं, आप सब तो फुल ब्राह्मण बैठे हैं, तो जो हाफ कास्ट है उनकी बात नहीं है, लेकिन जो फुल ब्राह्मण है उनके लिए तो बाबा कहता है, तो वो तो उस समय से ही शुरू हो जाता है। लेकिन मनसा तक मेरी पवित्र रहे, यानी किसी के प्रति मेरा बुरा चिंतन भी ना चले। अभी हमने जो पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति स्पष्ट की, किसी के प्रति मेरे मन में बुरा भाव नहीं आए, इसने ऐसा कर दिया तो इसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए, जैसे दुनिया में लोग करते हैं ना, किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो उसके लिए बहुत बुरा बुरा सोच लेते हैं, भगवान तू इसका ऐसे कर देना, इसका सत्यानाश कर देना, ऐसे भी कह देते हैं कई बार, फिर इसके तो ये मरे तो क्या हो। हाँ, अब सब जानते हैं। तो हम बाबा के बच्चे ऐसे ऐसे नहीं सोचते अभी, लेकिन फिर भी इतना बुरा हम नहीं सोचते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, हाँ इसको भी पता तो चलना चाहिए, हाँ इसके साथ भी कुछ तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं तो हम अपनी पवित्रता की स्थिति से नीचे आ गए। तो मन में किसी के प्रति वो भाव भी ना आए। फिर कई बार हाँ हम सत्य तो होते हैं, लेकिन अपनी सत्यता का थोड़ा सा अहम हो जाता है। जैसे बड़ी दादी थी, बड़ी दादी के साथ रहने का हमको बहुत सौभाग्य मिला है काफी वर्षों तक। तो दादी कई बार सभा में इस बात को बहुत गर्व से कहते थे कि मैंने जीवन में आज तक झूठ नहीं बोला है, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया है, चाहे जो भी परिस्थितियां हो। इतना बड़ा यज्ञ दादी संभालती हैं, हालांकि बाबा हमें कहते हैं किसी की कल्याण के लिए अगर हमें थोड़ा झूठ बोलना पड़े कभी, कल्याण के लिए तो समझते हैं ना, है ना, आत्म कल्याण के लिए या किसी दूसरे के कल्याण के लिए, तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। तो वो झूठ को युक्ति कहते हैं हम ब्राह्मण जीवन में, कि युक्ति से मुक्ति मिलती है। तो मानो मेरे घर वाले मुझे आने नहीं दे रहे हैं, बंधन में हूं मैं, ज्यादातर इसी के कारण से ही बंधन होता है। अब मधुबनी नहीं आने देते हैं, तो फिर क्या युक्ति लगाई कि मैं अपने फलाने रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ, पर आ कहाँ रही हूँ मैं, हाँ या आ रहा हूँ, जो भी है। भाइयों को इतना बंधन नहीं होता है, फिर भी माताओं को ज्यादा बंधन होता है इस मामले में। तो कई ऐसे करते हैं, तो क्या कहेंगे हम उसको, झूठ कहेंगे, क्या कहेंगे, तब हम उसको युक्ति कहेंगे। तो अगर मेरा उसमें स्वार्थ भाव नहीं है, कल्याण का भाव है किसी भी चीज में, और वो ईश्वर के प्रति है, तो वो फिर झूठ में नहीं आता है। लेकिन दादी कहती है कि कभी भी किसी भी रूप में मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, और किसी ने यज्ञ में कभी ये दावा नहीं किया कि मैंने झूठ नहीं बोला। हर कोई किसी ना किसी परिस्थिति में थोड़ा बहुत झूठ का प्रयोग कर ही लेते हैं। तो ये उनके जो महान गुण था, बचपन में ही जब उनकी जन्म पत्री बनाई थी उनके पिताजी ने, सुना होगा दादी की हिस्ट्री भी सुनते हैं आप सभी, तभी उन्होंने कह दिया था कि ये जो है श्री कृष्ण की मीरा बनने वाली आत्मा है, कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो ऐसे सुनाते हैं कि दादी जी ने चौथी कन्या के रूप में उनके घर में जन्म लिया। उनकी तीन बहनें और थी बड़ी, दादी जी की तीन बड़ी बहनें थी, और इंतजार हो रहा था घर में बेटे का, लेकिन बेटे की बजाय हो गई बेटी। उस जमाने में क्या होता था, आज के समय जैसा नहीं कि भाई जांच करवा लो और फिर दो बेटी हो गई, अब तीसरा तो बेटा ही होना चाहिए। तो फिर हम सब जानते हैं कि अब दुनिया में क्या करते हैं लोग, दो बच्चे से ज्यादा नहीं पाल सकते। उस जमाने में तो आठ आठ दस दस बच्चे हुआ करते थे, और फिर बेटे का इंतजार तो जरूर होता था, क्योंकि बेटा ही वंश चलाएगा, ये हिंदू धर्म की बहुत प्रबल मान्यता, ऐसा हम कहेंगे कि बेटे के बिना तो वो नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा। बेटा ही अग्नि को चिता देगा या अर्थी को कंधा देगा, ऐसा मानते हैं शास्त्रों के अनुसार जो मान्यता है। तो फिर एक बेटा चाहिए, उसके लिए फिर सात बेटी हो गई या आठ बेटी हो गई, वो परवाह नहीं है, पर बेटा तो होना ही चाहिए। नहीं तो कई बार लोग दूसरी शादी तक भी करते थे। आप हम सब अपने समाज को जानते हैं कि वो समय था उस समय, और जब उस समय उनका जन्म हुआ तो माँ ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि अब मुझे कितना सुनना पड़ेगा। बेटी का जन्म हुआ इसलिए नहीं रो रही थी, लेकिन अब मेरी दुर्गति क्या होने वाली है, ससुराल वाले जो हैं वो मेरे लिए कितनी बुरी स्थितियां पैदा करेंगे, मेरा जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो उनके पिता ज्योतिष थे, और जैसे ही उन्होंने उसकी जन्म पत्री बनाई तो उन्होंने उनकी माँ को समझाया कि तेरे को रोने की जरूरत नहीं है, ये महान आत्मा हमारे घर में आई है और पूरे जग में ये तेरा नाम रोशन करने वाली है, ये तेरे बेटे से भी बढ़कर है। वो फिर भले ही भविष्य में वो सब साबित भी हो गया कि कैसे दादी जी ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को संभाला और बाबा से भी आगे बढ़कर कितनी सेवाओं का विस्तार यज्ञ में किया। तो ये वो गुण थे दादी के, और बाबा ने भी पहचाना तुरंत। ब्रह्मा बाबा के पास भी जब दादी आई, जैसे ही उनको वो साक्षात्कार हुआ, तुरंत उसी घड़ी बाबा ने उनको उस ओम मंडली में समर्पित किया और निमित बना दिया। जैसे मम्मा निमित बनी तो मम्मा के बिल्कुल नेक्स्ट उनको मुनि मम्मा कहते थे। दादी का एक नाम शायद आप में से कईयों ने नहीं सुना होगा, मम्मा के नेक्स्ट राइट हैंड जो थी वो दादी थी और उनको फिर मुनि मम्मा माना, उनसे छोटी मम्मा जैसे ऐसे कहकर के उनको बुलाया जाता था। तो सच्चाई सफाई का गुण इतना बड़ा गुण है, इसके ऊपर कई ऐसी कहानियां भी लोग सुनाते हैं कि अगर सच्चाई के गुण का पालन किया तो। जैसे कहानी कहते हैं कि एक बार एक चोर किसी सत्संग में चला गया, तो उसने पूरा सत्संग सुना तो बहुत प्रभाव पड़ा उसके ऊपर, और वो जो गुरु थे सत्संग करने वाले वो सच्चाई का महत्व बता रहे थे कि व्यक्ति को हमेशा ही सच बोलना चाहिए चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, और सच बोलने का परिणाम जो है वो हमेशा ही श्रेष्ठ होता है, उससे हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। ऐसी कई बातें उन्होंने सुनाई वहां। तो उसने सोचा अच्छा ये इतना कह रहे हैं तो मैं सच बोलकर देखता हूँ क्या सचमुच उसका परिणाम इतना अच्छा होगा। तो उस दिन उसकी जो प्लानिंग थी राजा के महल में चोरी करने की थी, अब था तो वो चोर, तो गया रात के समय चोरी करने के लिए। तो जो पहरे पर था, अब पीछे से जाने की जरूरत नहीं है सच ही बोलना है, आगे से जाने लगा तो उसने उसको पूछा ठहरो कहाँ जा रहे हो तुम, तो उसने कहा मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो हंसने लगा कि कभी चोर बोलेगा कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, तो वो मुस्कुराया और उसको जाने दिया कि चोरी करने के लिए कोई थोड़ी कहकर जाएगा, ये कोई काम से आया होगा। गया अंदर महल में और जो जहाँ उनका खजाना रखा था राजा का, वहां पर वो वहां भी वो कोई पहरे पर था, तो उसने भी पूछा उसको, तो उसने वही बात कही कि उसको मैं चोरी करने के लिए आया हूँ, और फिर उसने अपनी जगह देखी सारी कहां से मैं चोरी कर सकता हूँ, और फिर उसको जो लेना था चुराना था उसने वो चुरा लिया और फिर वहीं से सामने से निकला। तो उसने पूछा उसको कि ये तुम कहां ले जा रहे हो और क्या ले जा रहे हो, तो उसने कहा कि ये मैंने चोरी किया है और अपने साथ ले जा रहा हूँ, सच बोल दिया उसने। तो उसने माना नहीं क्योंकि उसको पता था कि कोई भी चोर ऐसे चुरा करके ऐसे थोड़ी बोलेगा सामने सामने कि मैंने इसको चुराया है और अपने साथ ले जा रहा हूँ। तो सोचा होगा कोई महल का कर्मचारी कुछ काम से कुछ सामान ले जा रहा होगा, ऐसे करके फिर उसको जाने दिया। वो बाहर आ गया, उसने कहा वाह आज तो कितनी आसान चोरी हुई, किसी ने रोका नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, चुरा के ले गया। बाद में पता चला सचमुच चोरी हो गई, वो तो चोरी था जो आया था और उसने बोला, तो राजा ने उसको बुलाया और राजा के सामने जब आया तो उसने स्वीकार कर लिया सच बोलना है, उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने चोरी की है। तो उसने कहा कि तुमने सच क्यों बोला फिर अगर तुमने चोरी ही की थी, तो उसने कहा ऐसे ऐसे मैंने सत्संग में सुना था तो मैंने सोचा कि इसको प्रयोग करके देखना चाहिए, और मैंने देखा कि सचमुच मैंने जब वो उसको प्रयोग किया तो वो काम मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो फिर उसने राजा ने उसको कहा कि ठीक है मैं तुमको अभी तो क्षमा करता हूँ, इसकी तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी, पर अगर तुम प्रतिज्ञा करते हो कि तुम अब कभी चोरी नहीं करोगे तो मैं तुमको महल में नौकरी दे दूंगा। तो उसने कहा सच बोलने का इतना अच्छा परिणाम होगा ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे महल में नौकरी मिल जाएगी, अगर आप मुझे देंगे तो मैं क्यों चोरी करूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है चोरी करने की, और उसे महल में नौकरी मिल गई। तो ऐसे हम कई कथाएं सुनते हैं, तो वो केवल कथाएं नहीं है, सच बोलने में यानी पवित्रता की वो स्थिति बनाए रखने में कई बार हमें चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ता है। इसको बाबा कहते हैं सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं। और सत्यता के सूर्य को बादल ढक सकते हैं लेकिन अल्पकाल के लिए। बादल कितना समय के लिए सूर्य के सामने आते हैं? थोड़ा समय के लिए आते हैं लेकिन फिर वो बादल बाद में छट जाते हैं। तो ऐसे ही वो थोड़ा समय के लिए सिर्फ हमारी परीक्षा होती है लेकिन उसके बाद में जो उसका फल मिलता है वो फल सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे ऊंचा होता है। तो प्यूरिटी की पर्सनालिटी के साथ साथ रॉयल्टी भी जुड़ी हुई है। और बाबा कहता है इसीलिए क्योंकि आप पवित्र आत्माएं हैं तो इस पूरे युग में सर्वश्रेष्ठ आप आत्माएं हो। और आपकी पूजा भी न सिर्फ गायन होता है लेकिन पूजा भी उतनी ही श्रेष्ठता से होती है, विधि पूर्वक होती है। आज कितने अभिनेता हैं, कितने राजनेता हैं, कितने महात्माएं हैं, गायन होता है उनका, ऐसे नहीं कि नहीं गायन होता है, लेकिन जैसे देवी देवताओं का पूजन होता है ऐसा पूजन संसार में किसी भी आत्मा का नहीं होता। भले धर्म पिता हुए, उन्होंने भी पवित्रता का पालन किया और उसके कारण आज कई धर्म पिता पूजे भी जाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं पूजे जाते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा विधि पूर्वक हर कर्म का पूजन देवताओं का होता है। देवताओं का पूजन करते समय लोग पवित्रता का पालन करेंगे, बिना पवित्रता के पालन किए कोई भी व्रत उपवास करते हैं, विशेष पूजा का दिन होता है तो नियम पालन करते नहीं करते हैं, क्योंकि वो पवित्र रहे तो उनकी विधि भी वही है। भोजन की शुद्धि का भी पालन करते हैं, है ना, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे जब उनको अपने देवता का पूजन करना है तो, या तामसिक भोजन यानी मांसाहार नहीं करेंगे। तो एक जन्म की पवित्रता, और वो भी कुछ समय, हम पूरा जन्म भी नहीं रहते हैं, एक जन्म की पवित्रता हमें जन्म जन्मांतर तो क्या पूरे कल्प के लिए श्रेष्ठ और रॉयल बना देती है। परम धाम में भी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो बाबा के सबसे समीप होती हैं और उनकी चमक पवित्रता के कारण अन्य आत्माओं से अधिक है। जैसे बाबा कहते हैं आसमान में जो ज्यादा चमकते हुए सितारे हैं वो आकर्षित करते हैं, साधारण सितारों पर नजर नहीं जाती लेकिन चमकते हुए सितारों पर नजर जाती है। तो हम पूरे कल्प के वो चमकते हुए सितारे, जो हीरो एक्टर बाबा कहता है, वो हीरो एक्टर हम पवित्रता की धारणा के कारण ही है। तो इतना महत्व है और ये हमें इतना महान बनाती है। तो पवित्रता की ही श्रेष्ठता है और उस धारणा को हम संपूर्णता तक ले जाएं, ये हमारा अभी पुरुषार्थ होना चाहिए कि कोई भी विकार का अंश वंश भी ना हो। अगर हम उसके विस्तार में जाएंगे तो फिर वो थोड़ा और अधिक लंबा हो जाएगा। तो मैं अभी इसको यही समाप्त कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी चमक गए पवित्रता की चमक से, और पवित्रता की पर्सनैलिटी जो पूरे कल्प में आपकी सबसे महान पर्सनैलिटी है वो भी आपको प्राप्त हो गई। तो हम आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी का इस पवित्रता को कायम रखने का, संपूर्ण पवित्रता की धारणा की सूक्ष्म चेकिंग करने का संकल्प लेते हुए धन्यवाद करते हैं कि हम अपनी संपूर्णता की सूक्ष्मताओं को इस तपस्या भट्टी से धारण करेंगे। ऐसे धन्यवाद का हम एक हाथ की ताली से शुक्रिया करते हैं।
पवित्रता के राह पर, पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है।